नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर मीका के द्वारा से अपने लोगों के बीच में दंड की घोषणा करता है और तब हम देखते हैं कि जो कोई उसकी ओर फिरता है परमेश्वर उसे क्षमा भी करता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अपने रेडियो के निकट दूर दराज में बैठे हुए हैं, आप उनके आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि जब आपका वचन उन तक पहुँचे तो वे सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार के संसार की बुरी बातों से आप उन्हें छुटकारा दें, बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके जीवन की आवश्यकताओं को आप पूरा करें, ताकि निश्चित रूप से वे जानने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके पापों से क्षमा करना चाहते हैं। पिताजी, आज के वचन पर आप अपनी आशीष दीजिए, हर एक श्रोता भाई बहनों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मीका के युग में समाज की दशा यह थी कि वहां के लोग उपद्रव का काम देखा करते थे और वहां के सब रहने वाले झूठ बोलते थे और उनके मुंह से छल की बातें निकलती थी। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें घायल करेगा और उन्हें उजाड़ देगा। उन्हें उन सब बातों की घटी होगी जिसका वे आनंद ले रहे थे और उनका छिपाया हुआ धन लूट लिया जाएगा। इसका कारण है कि वे परमेश्वर के मार्गों की अपेक्षा ओमरी और आहाब के मार्गों पर चल रहे थे। कहने का अर्थ है कि वे दुष्टता का मार्ग अपना रहे थे। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें निंदा और लज्जा का कारण बना देगा, उनका देश पूरा उजाड़ हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी मीका नबी की पुस्तक के द्वारा बातचीत करना चाहता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 7:3 को पढ़ें। 7:3 में लिखा है, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है कि वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। वे थोड़ी बहुत बुराई नहीं करते थे, वे बुराई करने में जी जान लगा देते थे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसी प्रकार से ये बुराई करने के लिए जी जान लगा देते थे। लिखा है कि हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। वे पैसा कमाने के लिए बुराई करते थे। वे बुराई इसलिए नहीं करते थे कि वे चरित्रहीन थे, परंतु इसलिए कि वे धन के लोभी थे, जैसा कि आज भी हम देखते हैं। ये लालसाओं में लिप्त थे। हाकिम और न्यायी से अर्थ है कि उनकी सरकार की भ्रष्टता। हाकिम और न्यायी से न्याय की आशा की जाती है, परंतु वहां की स्थिति ऐसी नहीं थी। और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। आज इस देश के सदाचारों का उपहास किया जा रहा है, क्योंकि प्रसार माध्यम और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आज हमें जो आवश्यकता है वह बाइबल आधारित जीवन की है, परंतु संसार में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की निंदा और सिर्फ निंदा ही की जा रही है। कोई एक दूसरे की चिंता नहीं करता है, दूसरे की सहायता करना नहीं चाहता है, वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना चाहता है। मीका 7:5 में आगे लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगनी से भी संभल कर बोलना। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है कि आज का भद्र पुरुष भी कटीला गुलाब है। यदि आप सावधान न रहें तो गुलाब का कांटा चुभ सकता है। मीका के युग में कथित भद्र पुरुष पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते थे। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। यहां पर कहता है कि अपनी पत्नी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। आज के लेखक वास्तव में बुद्धिजीवी नहीं, चतुर लेखक हैं, चतुर कहानीकार हैं। परमेश्वर ने इसराइल को कठोर दंड दिया, यूनान और रोम को मिटा डाला। आज अनंत मूल्य का क्या है? मेरे मित्रों, उस समय जो दशा थी वह आज भी है। मीका की भविष्यवाणी कैसी सटीक है। लिखा है, तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। लुकार्ची सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। अर्थात अंत समय की एक पहचान होगी, देशों में संकट और कोलाहल होगा। आज अंत समय का चिन्ह इसराइल में नहीं है, हम कलीसिया के युग में हैं। हमें किसी दिन की नहीं, मौसम की जानकारी, समुद्र की लहरों की गर्जन, आंधी तूफान की जानकारी की आवश्यकता है। देश देश में कोलाहल सुनने की आवश्यकता है। अंत समय के लिए परमेश्वर का यही चिन्ह है, जिसे हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, यह अंत समय के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ चिन्ह है। मीका उनके जीवन में पाप की समस्या का उल्लेख कर रहा है। मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 8 पद में एक अति उत्तम बात कही गई थी, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परंतु वे इसमें असमर्थ थे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 10 पद में पत्रस ने भी सच ही कहा है कि न तो वे और न ही उनके पुरखे व्यवस्था के जुए को उठा पाए थे, तथापि आज विश्वासियों का विचार है कि वे आराधनालयों में जाएंगे तो उद्धार पाएंगे और अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहरेंगे। ऐसा पाखंड बेजोड़ है। व्यवस्था के अधीन रहने वालों को तो क्षमा किया जा सकता है, परंतु हमारे पास तो खुली बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, जिसे प्रतिदिन पढ़ने के लिए हमें दिया गया है, जो स्पष्ट कहती है कि हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही उद्धार पाते हैं। और आपको क्या चाहिए? मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। यह उस युग की दुर्दशा का वर्णन है, और उनका ही नहीं, विश्व की सब सभ्यताओं का भी यही हाल है। हमें जानना है कि संसार बहुत घटिया है, और परमेश्वर के लिए खड़े होने वालों के लिए तो अति अनर्थकारी है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 34 पद में प्रभु यीशु कहता है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। जब तक संसार में दुष्टता है, तब तक शरीर और आत्मा में युद्ध होता रहेगा, अंधकार और ज्योति संघर्षरत रहेंगे, अच्छा और बुरा परस्पर विरोध करता रहेगा। मीका 7:6 में लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरोध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु कहता है कि अच्छा और बुराई का मेल कभी नहीं होता। मैं सुबह पाव फटने से पूर्व ही अध्ययन करने के लिए बैठ जाता हूँ और मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर रहता है। अंधकार को ज्योति से संघर्ष करते देखना बड़ा ही रोचक लगता है और धीरे धीरे सूर्योदय होता है तथा अंधकार हट जाता है। ऐसे ही इस संसार में आत्मिक युद्ध भी चलता रहता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 10:35-36 में प्रभु यीशु कहता है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को अच्छे और उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, अर्थात आप अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। मीका कहता है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगनी से भी संभल कर बोलना। मेरे मित्रों, मैं वर्षों से पति पत्नी में यह भेद देखता आ रहा हूं। या तो पति को पत्नी पर भरोसा नहीं है या पत्नी को पति पर भरोसा नहीं है। हम ऐसे युग में रहते हैं जब मनुष्य के वचन पूर्व की तुलना में अब वह मूल्य नहीं रखते। आप लेखों पर, रेडियो, टीवी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की संतान को सब पर विश्वास नहीं करना है, उन्हें परख करके देखना है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रत्येक रेडियो, टीवी प्रचार को परखें, क्योंकि मानवीय स्वभाव विश्वास के योग्य नहीं है। आप परमेश्वर से मांगे कि वह आपको सत्य प्रकट करे। मीका नबी की पुस्तक 7:6 में यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। यीशु ने भी यही कहा था, मीका के युग में भी यही था। ऐसा समय पतन का युग होता है, अंधकार का समय होता है। हम ऐसे ही युग में वास करते हैं। मेरे मित्रों, आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? यह इतिहास का दुखद समय है। इसी बात का तो मीका को भी दुख था। यह घमंड की बात नहीं, आनंद की बात नहीं, यह आपके और मेरे लिए दुखद स्थिति है। मीका 7:7 में कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। यहां मीका का आत्मविश्वास, आश्वासन और आस्था प्रकट है। उसे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर यथोचित व्यवस्था भी करेगा। आज चाहे कैसा भी अंधकार का समय क्यों ना हो, देश देश में कोलाहल क्यों ना हो, जाति जाति में मतभेद क्यों ना हो, परमेश्वर की संतान को विचलित नहीं होना है, पद भ्रष्ट नहीं होना है। लुका रचित सुसमाचार 21:26-28 में प्रभु यीशु कहता है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मीका कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इस समय परमेश्वर की संतान को परमेश्वर और उसके वचन बाइबल के अत्यधिक निकट रहना है। आज लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर दुनिया में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास में है, आप उसे खोल करके पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। मीका 7:8 में लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यह धर्मशास्त्र का एक महान सिद्धांत है। परमेश्वर का जन ज्यों ही गिरेगा त्यों ही परमेश्वर उसे उठाएगा। अंधकार के युग में परमेश्वर हमारी ज्योति है। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के जन को इस अंधकार और कष्ट के युग में बाइबल के अत्यधिक निकट रहना है, वचन पर मनन चिंतन करना है। मेरे मित्रों, पद 9 में मीका अपने लोगों की ओर से परमेश्वर के समक्ष अपने पाप को स्वीकार करता है, या यूं कहें कि वह परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। यह उसका अति मधुर स्वीकरण है और अंधकार की अपेक्षा उसके होठों पर परमेश्वर की स्तुति है। वह अपने बैरी से कहता है, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही अंधकार में पहुंचूंगा या पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मीका को पूरा पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उससे मुक्ति दिलाएगा और उसके लोगों का वह उद्धार करेगा। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर पूरा पूरा है कि वह आपका उद्धार करता है? वही आपको आपके पापों से मुक्ति दे सकता है, या आप कोई छोटा मोटा काम करेंगे और परमेश्वर आपको मुक्ति देगा? आप क्या सोचते हैं, आपका परमेश्वर कौन है? सर्वप्रथम आप उसे ढूंढें। मीका 7:9 में लिखा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। मीका अपने लोगों के पापों का सार्वजनिक पाप स्वीकरण करता है। ओह, उसका विश्वास कैसा महान है! वह अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करता है। आज संसार के इतिहास में, अंधकार के युग में, परमेश्वर की संतान में भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर ने सब होने दिया, परंतु हर बात में नियंत्रण उसी के हाथ में है। अतः हमें परमेश्वर के अधीन ही रहना है। हमें अपने पाप को स्वीकार करके परमेश्वर के साथ लेखा साफ रखना है। वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। देखिए कि मीका क्या कहता है, मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। मेरे मित्रों, हमने पाप किया है, हमने इस समृद्ध समाज का सुख भोगा है, हम इस समाज में अनिष्ठा पर मुस्कुराते हैं, हमारे घोर अनैतिकता को अनदेखा किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाए। जी हां, परमेश्वर अपनी प्रजा के पापों का दंड देने के लिए अशुरों को डंडा बनाएगा, परंतु आगे चलकर वह उनका पुनरुद्धार करेगा और उज्याले में निकाल ले आएगा। तब वे उसका धर्म देखेंगे। उन्हें स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया तो वह उसकी धार्मिकता थी। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में दंड दे रहा है ताकि हम सत्यता को पहचान कर उसकी ओर फिर जाएं। क्या आज आप परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तैयार हैं? आज आप एक सही निर्णय लें और परमेश्वर की ओर फिरें ताकि उन आशीषों को आप पा सकें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
को कभी अपना नाता